ओम शांति। हम सभी के बीच में हमारे डबल डॉक्टर, जिस्मानी और रूहानी डॉक्टर आदरणीय सविता बहन पहुंच गए हैं। आप सभी ने उनकी दृष्टि भी ली। हम सभी एक हाथ की ताली से उनका स्वागत करते हैं। आज हम सभी को बताएंगे कि संपूर्ण पवित्रता क्या है। यूं तो दुनिया के लोग भी पवित्र बनते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, लेकिन बाबा ने हम ब्राह्मणों को जो पवित्रता सिखाई है, उसकी गहराई बताई है कि कैसे संकल्प स्वप्न तक भी हमारी पवित्रता हो, तो उसकी गहराइयों तक आपको ले जाएंगे। उससे पहले उनका उस संक्षिप्त परिचय दे देना चाहूंगी। आपने बाल्यकाल से ही ये ज्ञान प्राप्त किया। 1971 में आप मधुबन सेवा के लिए आए। 1972 में आप डायरेक्ट मधुबन में हमारी राजयोगिनी सविता दीदी, आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर उदयपुर, कोटा आदि में प्रैक्टिस करते हुए 1991 से ग्लोबल हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑफिसर आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। और 2000 के साल से आपका ये विशेष भाग्य रहा कि आपने हमारे मुख्यालय की उस समय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के एक मेडिकल एडवाइजर के रूप में उनके साथ 2007 तक अपनी सेवाएं प्रदान की, उनके अंग संग आप रहे। यूं तो आप 1975 से बचपन से ही आध्यात्म में रुचि रखती रही। 1989 में आपने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा अर्थ बाबा के यज्ञ में समर्पित किया। आप वुमेन विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आपने न केवल भारत में लेकिन अनेक देशों में इस ज्ञान की सुवास को फैलाने में अपना योगदान दिया है, जैसे यूके, यूएसए, जापान, रशिया आदि आदि देशों में आपने इस ज्ञान को फैलाया है। और साथ ही साथ लोगों को आपने पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना सिखाया है। आप एक प्रखर वक्ता हैं। आपने अनेक नेशनल, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। आज ऐसी महान विदुषी को हम अपने बीच में पाकर के गौरवान्वित अनुभव करते हैं और फिर से निवेदन करते हैं, वो हम सभी को बताएंगे संपूर्ण ब्रह्मचर्य, संपूर्ण पवित्रता क्या है। आदरणीय डॉक्टर सविता बिन।
ओम शांति, ओम शांति। यहाँ पांडव भवन में आप सभी भक्ति करने आए हैं तो यहाँ का तो वातावरण ही इतना पवित्र है कि मन स्वतः ही पवित्र होने लगता है। कौन कौन है जो पहली बार आए हैं पांडव भवन में, माना रहने के लिए? वैसे तो आते ही हैं, चार धाम करते हैं। हाँ, देखो कितने हैं। तो यहाँ का अनुभव और जितने भी अपने कैंपस हैं उनसे बहुत विशेष है। मधुबन में बाबा की शक्ति कहो, ये वरदान भूमि है कि हमें योग लगाना नहीं पड़ता है। योग जैसे खुद ही लग जाता है। तो जब विषय की बात करें तो पवित्रता तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ही नवीनता है इस ज्ञान की, या बाबा कहता है विशेषता है, या ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, अलौकिकता है। और पवित्रता से ही अभी हम अव्यक्त बाप दादा की कमेंट्री सुन रहे थे ना, तो कैसे प्यूरिटी की ही रॉयल्टी है। जो देवी देवताओं की पूजा होती है उसका आधार भी क्या है, प्यूरिटी है ना, पवित्रता के विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप ब्राह्मण सो देवता बनते हो, और जब पूज्य बनते हो तो जो पुजारी हैं या भक्त भी हैं तो वो कभी भी बिना प्यूरिटी के मूर्ति को भी टच नहीं करते ना। गर्भगृह में सबको जाने की इजाजत नहीं होती है, और जो भी विशेष दिन होते हैं वो भी माना पूरा ध्यान रखते हैं कि हमारा ये नियम न टूटे। और इसीलिए देवी देवताओं की जैसी पूजा है ऐसी विधि पूर्वक पूजा और किसी भी धर्म पिता की नहीं है, किसी महान आत्मा की नहीं है बाबा कहते हैं, या कोई राजनेता की नहीं है। हालांकि उनके यादगार बनते हैं, मेमोरियल में उनके स्टैचू बनाकर लगाते हैं, लेकिन पूजा किसकी सबसे अधिक होती है, देवी देवताओं की। तो उसका भी कारण है प्यूरिटी। तो वो प्यूरिटी हमने इस जीवन में धारण की है, और दो युगों तक सतयुग त्रेता तक आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी भले आत्मा पवित्र बनती है लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है। तो इस दो युगों तक वो हमें उसका प्रालब्ध पवित्रता के रूप में ही प्राप्त होता है। तो प्यूरिटी की परिभाषा जो बाबा हमें कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना तो एक स्टेप है, पहला कदम है, काम विकार पर विजय। लेकिन ये केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं, लेकिन ब्रह्माचारी बनना है। तो ब्रह्माचारी बनना माना ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे संकल्प किए, जैसे बोले बाबा ने, जैसे कर्म किए, वही हमारे संकल्प बोल और कर्म हो। तो ब्रह्मा बाबा जैसा हमारा जीवन हो तब कहेंगे कि प्यूरिटी है। फिर बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनना है, केवल एक विकार पर विजय प्राप्त करना नहीं, काम विकार पर विजय हो गई और हम पवित्र है नहीं, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी बनना माना सभी विकारों पर, मोटे रूप में नहीं, उनके अंश वंश पर भी विजय पाना, उनके जो रॉयल रूप हैं उस पर भी विजयी बनना। तो हम सब जानते हैं विकारों के रॉयल रूप कौन से हैं। काम विकार का रॉयल रूप बाबा कहता है कामना, कामना उसका अंश है। व्यक्ति से कामना रखना या कोई वस्तु की कामना, वो हम कहेंगे माना इच्छाएं, वो भी काम विकार का अंश है। फिर क्रोध का है ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैर भाव, ये क्रोध के अंश वंश है जो दिखते नहीं है। क्रोध तो बाहर में दिखता है ना, क्रोध करता है व्यक्ति दिखता है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष घृणा दिखती नहीं है अंदर अंश की। इसीलिए कहा कि अंदर ही अंदर व्यक्ति उन भावों से नेगेटिव रहता है। फिर लोभ का अंश है, चाहिए चाहिए, ये होना चाहिए, तो चाहिए चाहिए के पीछे जाना, वो है लोभ। और मोह का अंश वंश क्या है, मोह का अंश वंश है मेरा मेरा, जितना मेरा मेरा में फंसे रहते हैं, चाहे वो व्यक्ति में मेरा मेरा है, चाहे वो वस्तु में मेरा मेरा है, वो मोह का अंश है। और अहंकार का अंश है मैंपन। मैंपन यानी अपनी विशेषताओं का या जो भी अपनी कोई पोजीशन है, कोई अटेनमेंट है ना, तो उसका मैंपन रखना, थोड़ा उसका मना अहम का अभिमान, बाबा नहीं कहता फिर उसको, लेकिन उसके उसमें रहना, थोड़ा रौब में रहना कि मैं ये हूं। तो ये सारी भी चेकिंग चाहिए। तो जब हम इसको भी जीत लेते हैं तब हम कहेंगे संपूर्ण पवित्र। फिर इसके भी आगे बाबा कहता है स्वप्न में भी कि कोई भी विकार का अंश प्रकट ना हो, ना ये तो अपने जीवन में, लेकिन स्वप्न में माना सब कॉन्शियस माइंड तक भी ना हो कि स्वप्न में ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है, या स्वप्न में किसी के प्रति क्रोध के वश बोल रहे हैं हम, या ईर्ष्या के वश हम व्यवहार कर रहे हैं, तो स्वप्न में भी नहीं। फिर उससे भी आगे बाबा कहता है कि दिनचर्या में भी एक्यूरेट, दिनचर्या में भी आलस्य और अलबेलापन ना हो। जो बाबा ने हमें अमृत वेले से रात तक दिनचर्या दी है उसमें हम एक्यूरेट चलें, अलर्ट रहें, तो वो हम कितना कर पाते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब संपूर्ण पवित्रता में कमी है। और फिर उससे भी आगे बाबा कहता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो अगर पवित्रता है तो कभी दुख अशांति आ नहीं सकती। तो अगर हम दुख महसूस करते हैं, कोई भी बात में हम दुख ले लेते हैं, या बहुत व्यर्थ संकल्प चलाते हैं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, नेगेटिव संकल्प तो है ही है लेकिन व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, तो अगर समर्थ की बजाय व्यर्थ चलता है तो वो भी इम्प्यूरिटी है। तो अभी हम किस स्टेज तक पहुंचे हैं, क्योंकि हम सभी इसी राह के राही हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संपूर्ण पवित्र बनना, लेकिन अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार हम नंबर वार हैं, यथाशक्ति हैं कि अभी हम कौन सी स्टेज तक पहुंचे हैं, केवल ब्रह्मचर्य तक पहुंचे हैं या उससे भी आगे हम पुरुषार्थ में बढ़ चुके हैं। और ब्रह्मचर्य में भी बाबा बहुत हमें सावधानी देते हैं, है ना, जैसे कह रहे थे ना दुनिया में भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो उनकी विधियां हैं अपने दुनिया में, तो बाबा का ज्ञान नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं जो रहते हैं ब्रह्मचर्य में, रहते हैं सिंगल भी रहते हैं। अब जैसे हमारे ही देश के विशेष व्यक्ति में जैसे कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं, या योगी हैं, राहुल गांधी भी हैं, पहले अब्दुल कलाम जी थे, तो वो सिंगल थे। तो पवित्रता की धारणा से उनका बल हम समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति से अधिक है। तो पवित्रता का वो बल, तो चाहे वो भले ही बाबा के ज्ञान में नहीं है, इसीलिए बाबा साधु संन्यासियों की भी महिमा करता है कि आज उनकी प्यूरिटी ने ही भारत को थमाया, लेकिन वो भी ऐसा मानते रहे कि घर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता, पर बाबा ने इस असंभव को संभव करके दिखाया। तो बाबा के ज्ञान की विधि उनकी विधि से बिल्कुल अलग है। उन्होंने क्या विधियां अपनाई, जैसे राम कृष्ण परमहंस थे, उन्होंने अपनी पत्नी को मां का दर्जा दिया, उसे शारदा मां कहते थे। ऐसे ही विवेकानंद ने भी अपने गुरु को फॉलो किया, जब वो अमेरिका में थे तो उनका भाषण हुआ, वो प्रसिद्ध हो गए अमेरिका में, भाषण के बाद विवेकानंद, ऐसे गुरु आए हैं भारत से, सन्यासी आए हैं। तो जब उसके बाद फिर उनको लेक्चर्स मिलने लगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स उनको बुलाने लगे वहां, क्योंकि वो काफी समय रहे अमेरिका में, फिर कई महीनों रहे उसके बाद। तो एक यूनिवर्सिटी में भाषण करके जब वो बाहर आए तो वहां की एक अमेरिकन लेडी वो उनसे मिली और कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कहो। तो उसने कहा कि वहां तो ओपन होते ना लोग, तो सीधा सीधा बोला मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप देखती नहीं हो मैं सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं तो शादी नहीं करूँगा। तो उसने फिर पूछा विवेकानंद ने, तुम क्यों शादी करना चाहती हो? तो उसने कहा कि मेरे को आपके जैसा बेटा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए तो मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ, आप मेरी माँ हो। और उसने फिर उनको छोड़ा नहीं, बाद में वही उनकी सबसे अनन्य शिष्या बनी और फिर निवेदिता उसका नाम, हिंदी में उन्होंने निवेदिता नाम दिया उसको, जो लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री उनको मालूम है। और फिर वो भारत में भी जब उन्होंने पूरा धर्म की स्थापना की, अपने इस पंथ की स्थापना की, तो फिर वो पूरा समय उनकी सहयोगी रही, भारत में भी आई वो उनके साथ। तो मतलब उनकी अपनी विधियां हैं, कई पंथ हैं, जैसे अपना ये स्वामीनारायण है, वो तो स्त्री का मुंह ही नहीं देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा नारी नरक का द्वार है, दोष किसके ऊपर डाल दिया, और दोष है किसका, स्वयं की दृष्टि वृत्ति का दोष है, अपनी दृष्टि नहीं बदल सकते तो दोषी। तो बाबा ने तो कहा उल्टा, बाबा ने कहा नारी ही स्वर्ग का द्वार है, और बाबा ने निमित्त भी किसको बना दिया, बहनों माताओं को निमित्त बना दिया। तो और उसी पवित्रता के बल से ना, जो वो समझते रहे कि घर गृहस्थ में रहते हुए संभव नहीं है, तो बाबा इसीलिए गृहस्थियों की महिमा करते हैं कि आप वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने, जो सन्यासी महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हैं, इवन कुमारों को भी, जो भी युवा हैं उनको भी बाबा यही कहते हैं। तो क्या लगता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? तो बाबा ने तो हमें स्मृति दिलाई कि मैं कौन हूँ, मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप ही क्या है। ये तो अपवित्रता तो शूद्रों का संस्कार है, और मैं कौन हूँ, मैं तो शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। तो स्मृति से समर्थि आ गई कि हम तो हैं ही आदि अनादि पवित्र स्वरूप, और फिर दो युगों तक हम पवित्र रहे हैं, देवी देवताओं के रूप में पवित्र रहे हैं। फिर हमने हिम्मत रखी संगम युग पर, बाबा ने जो हमें श्रीमत दी, है ना, देखो कितने विघ्न पड़े शुरू से, जब से ओम मंडली बनी सबसे ज्यादा विघ्न किसके ऊपर आए, किस धारणा से आए, बाकी सबको लोग इतना नहीं वो ऑब्जेक्शन करते थे कि अच्छा जीवन है, अच्छा ज्ञान है, लेकिन बाबा एक बात हटा दो, फिर देखो आपके यहाँ लाखों लोग जो हैं वो आपके फॉलोअर्स बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये मैं कहता नहीं हूँ, बाबा तो खुद भी गृहस्थी थे, तो बाबा ने कहा ये मैं नहीं कहता हूँ, कौन कहता है, और वो तो हीरों का व्यापारी है, तो उसे कोई साधारण आत्माओं को नहीं, लेकिन विशेष आत्माएं जो इस धारणा को कर सके, वो आत्माएं, वो रतन उसे चाहिए। तो अपने आप ही सतयुगी आत्माओं की छटनी हो गई ना उस हिसाब से, क्योंकि जो वो धारणा करने वाली आत्माएं हैं वो तो होंगे ही विशेष आत्माएं ना। तो शुरू से जो झगड़े हुए, आज भी अगर ज्यादा विघ्न आता है तो किसकी किसकी वजह से आता है, पवित्रता की धारणा की वजह से आता है। और बाबा इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते कि मेरे पति नाराज हैं या मेरे घर वाले नाराज हैं, अगर हम इस धारणा को कर रहे हैं तो हमारा घर टूट सकता है, है ना भाई, बहुतों के घर टूटे भी सही जिन्होंने बाबा को पहचाना, बाबा को अनुभव किया और बाबा की इस धारणा को समझा कि इसकी प्राप्ति क्या है। हम क्यों भी क्यों कर पाते हैं पवित्रता की धारणा, ये भी हमें पता है कि इसकी प्राप्ति कितनी ऊंची है, कि आने वाले 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने का, राजाई प्राप्त करने का आधार क्या है, वर्तमान की ये धारणा है। तो उसके आगे एक जन्म थोड़ा सा त्याग करना क्या बड़ी बात है। तो बहुतों ने खासकर माताओं बहनों पर, भाइयों पर भी होता है, लेकिन इतना नहीं जितना माताओं बहनों पर ये विघ्न आता है। तो कईयों ने अपने पति को छोड़ा, जैसे ओम मंडली के समय में भी छोड़ा, घर छोड़ छोड़ कर आ गए, अच्छे अच्छे घरों की बहनें थी और बच्चों सहित, है ना, छोटे बच्चे थे तो छोटे बच्चों को भी ले आए। फिर भले ही पति ने दूसरी शादी की, जैसे निर्मल शांता दादी थे, ब्रह्मा बाबा की जो बेटी थी ना, आप तो सब हिस्ट्री तो सुनी है सभी ने, तो दादी ऑलरेडी उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन जैसे ही साक्षात्कार हुआ, दादी को साक्षात्कार हुआ और जैसे ही उनको समझ में आया कि ये मेरे वो पिता नहीं, अब तो ये ब्रह्मा बाबा हैं, ये तो मेरे अनादि अलौकिक पिता हैं अभी, तो बस अपना वो घर छोड़ा और बाबा के पास आ गए। तो बेटी को पति ने रख लिया, फिर पति ने दूसरी शादी कर ली, तो भी उनको परवाह नहीं हुई, इसलिए बाबा कहता है इसमें फिर नष्टो मोह बनना पड़ता है। तो ऐसे हुआ, अभी वर्तमान में बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि अब पहले जैसे बंधन नहीं है। आजकल फिर भी लोगों को एक स्वतंत्रता थोड़ी मिली है कि आप जो करना चाहो, आपका जीवन है, आप करो, मतलब फिर भी फर्क है उस समय से आज के समय में कि इतना बहुत बंधन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को होता है और अगर वो हिम्मत रखते हैं तो वो अपने डाइवोर्स भी भले ले लेते हैं, इसके लिए कि हमारी पवित्रता की धारणा हमें कायम रखनी है। तो ऐसे केसेस, ऐसे लोगों को हम जानते हैं, ऐसी बहनों को हम जानते हैं कि जिन्होंने इसके लिए केवल अपने उसको, और फिर ये भी निश्चय कर लेती हैं उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे दूसरों के घर में काम करके अपना जीवन चलाना पड़े, बाबा के घर में सेवा मिलती है तो ठीक और नहीं मिलती है तो अगर मुझे ऐसे भी चलाना पड़े, लेकिन मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो ऐसी हिम्मत रखने वाले भी बाबा के बच्चे हैं, आज भी हैं ना, वो मंडी के समय तो हुआ ही हुआ। तो कहने का भाव ये है कि बाबा की विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है, सहज विधि है और उसकी प्रारब्ध भी बहुत ऊंची और श्रेष्ठ है। तो लेकिन कब कमी आती है इसमें? जैसे ही हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति बदलकर दैहिक दृष्टि वृत्ति होती है। अब आत्मिक दृष्टि वृत्ति निरंतर रखना, 63 जन्मों से देह अभिमान में चले आ रहे हैं, उसमें कहां ना कहां भूल हो जाती है। अगर नहीं रख पाते मानो और देह अभिमान में आ गए तो देह पर नजर जाएगी, तो उसको बाबा कहता है क्रिमिनल आई। तो कर्म में नहीं आते, लेकिन मनसा में भी, मनसा वाचा कर्मणा 3 लेवल है ना, तो मनसा में भी किसी के शरीर पर दृष्टि गई और वृत्ति चंचल हुई, उसको बाबा कहता है क्रिमिनल आई। तो ये कहीं, मतलब ये कमी तो नहीं है, वो भी चेकिंग चाहिए कि बिल्कुल ही आत्मा पर ही हमारी नजर जाए, मस्तक मणि पर ही हमारी नजर जाए। आप जब भी किसी से बात करते हो तो कहां देखना है, बाबा कहता है कहां देखना है, मस्तक में देख करके ही, आंखों में देखकर बात करते हैं ना, बात करते हैं तो आईज कॉन्टेक्ट होता है, लेकिन आईज के साथ में कौन है, बीच में कौन है, आत्मा है। तो बाबा ने बहुत बार ये बात कही है कि आत्मा को देखकर बात नहीं कर सकते हो, कि मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं। तो अगर देह को टच किया तो फिर क्या होने वाला है, बाबा कहता है जैसे देह एक सांप की तरह है, आप किसी सांप को टच करेंगे तो उसके अंदर विष है और वो काटेगा जरूर ना, और जहां विष है उसका प्रभाव जरूर होता है। तो ये देहिक दृष्टि अपना असर न दिखाए वो नहीं सकता। तो क्या देखने लग जाते हैं, देह में देखेंगे तो, आजकल की तो दुनिया ही देह अभिमान की दुनिया है ना, अभी तो यहां तो हम सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि सभी ब्राह्मण हैं, लेकिन जब हम बाहर दुनिया में रहते हैं, अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, तो अनेक लोगों से हमारा व्यवहार है, संपर्क है, और है तो कलयुग ना, तो लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट दिखने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं लोग, ऐसा ऐसा मेकअप करते हैं, है ना, उनके बाल देखो, उनका होता है ना, आप देखते हैं सारे स्टाइल, और सारा टीवी और सब मीडिया किससे भरा पड़ा है, इन्हीं चीजों से भरा पड़ा है। अब हम रहे उसी दुनिया में रहे हैं तो उससे बच तो नहीं सकते। उनका पूरा लक्ष्य होता है कि किसी को मेरी ओर आकर्षित कर पाऊं मैं। जैसे मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं आजकल लोग, और कोई तो रियल ब्यूटीफुल भी होते हैं, उनका है ना रंग गोरा होगा, पर्सनालिटी ऐसी होगी, फीचर्स भी सुंदर होंगे कि ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उसके शरीर की तरफ चला जाए। तो फिर भी देखना है, अगर प्रभावित हुए तो उसकी रिजल्ट क्या होती है, प्रभावित हुए तो फिर झुकाव होगा, उनसे बात करने की इच्छा होगी, मिलने की इच्छा होगी। हमारे अगर आसपास हैं कोई भी, दूर वालों को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो भी हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी ऐसे हैं, तो फिर हम उनके क्लोज जाने की कोशिश करते हैं, और जब उनसे ज़्यादा बातचीत करेंगे तो फिर क्या होगा, अपनापन लगाव में बदल जाएगा, और जब लगाव में बदलेगा तो उसकी निशानी है कि वो व्यक्ति हमें योग में विघ्न बन जाएगा। एक्स्ट्रा स्नेह हो गया ना, उस आत्मा के प्रति आकर्षण है, तो योग में बैठेंगे तो कौन याद आ रहा है, बाबा की बजाय वो आत्मा याद आ रही है। तो जो योग में हमें शक्ति का अनुभव होना चाहिए, जो बाबा के प्यार का अनुभव होना चाहिए, जो प्राप्तियों का अनुभव होना चाहिए, उससे हम फिर वंचित हो जाते हैं। फिर कई इशारा देते हैं, क्योंकि ये चीजें छुपी तो नहीं रहती, किसी के साथ भी आपका थोड़ा ज्यादा कनेक्शन दिख रहा है तो लोग दुनिया में, लौकिक दुनिया में भी लोग इसको बुरा मानते हैं, है ना, मेल फीमेल का ज्यादा कनेक्शन होता है ना, तो घर वाले भी बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन होते हैं ना, तो पता चलता है। आप नहीं बताएंगे, आपको कोई कहेगा तो बोलेंगे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस थोड़ा बातचीत करते हैं आपस में, अब ये तो चलता ही है ना, ऐसे हम कहते हैं, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, अब हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इतना तो चलेगा ना, तो क्या करेंगे, चलेगा नहीं चलेगा, क्या कहेंगे। बाबा कहता है अगर आपने उसको सिद्ध करने की कोशिश की, हम यही कह रहे हैं ना, अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जैसे कहते हैं ना कि धुआं कब निकलता है, आग जल रही है तभी धुआं निकलता है, बिना आग जले तो धुआं नहीं होगा। अगर किसी को वाइब्रेशन आ रहा है, इसका मतलब कुछ है, तभी वो कहने की हिम्मत रखेगा, नहीं तो कौन बोलेगा। ये बात तो किसी को भी बहुत बुरी लगती है, किसी के भी करेक्टर पर कोई उंगली उठाए तो बुरा लगता है, नहीं लगता है, सबसे बुरा क्या लगता है, यही लगता है। तो फिर बाबा कहता है कि अगर आप स्पष्टीकरण देते हो, मानो किसी ने आपको इशारा दिया, जो भी आपका शुभ चिंतक है, चाहे वो ब्राह्मण है या नॉन ब्राह्मण है, और आपने स्पष्टीकरण दिया, मतलब आप अपने पाप का स्पष्टीकरण दे रहे हो और उस लकीर को और लंबा कर रहे हो, तो हमेशा अपने को दोषी समझो। अगर आप कहते हो कुछ नहीं है, तो अपना परिवर्तन करके सचमुच कुछ नहीं कर दो, है ना। मैं अपने जीवन का अनुभव सुनाती हूँ। मैं जब यहाँ मधुबन में आई, तब हम यहाँ पर बहुत यंग थे, जब मैंने मेडिकल पास ही किया था, 24 साल की उम्र में यहाँ डिस्पेंसरी में हम सेवा करते थे। हॉस्पिटल बना नहीं था, आए तो हॉस्पिटल के लिए थे, लेकिन अभी हॉस्पिटल बना नहीं था और यहाँ डिस्पेंसरी में हमको सेवा मिली। तो मधुबन में तो बहुत कम बहनें थी, दादी तो कुमारियों को रखती नहीं थी, पर क्योंकि हम हॉस्पिटल के लिए आए थे एज ए डॉक्टर, तो फिर हम रह रहे थे, तो हम दो तीन बहनें ही थे यहाँ पर। तो नेचुरली डिस्पेंसरी में मधुबन तो सब पांडव थे यहाँ, तो मेरे पास तो फिर जो इलाज कराने आएंगे वो भाई ही होंगे ना। तो हमने एक भाई बीमार थे, उनका हमने इलाज किया और वो ठीक हो गए। तो जैसे किसी की भावना बन जाती है ना, तो उन्होंने जैसे कि कुछ भी उनको खाने पीने का कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर जंगलों में बहुत फल भी ऐसे होते हैं जो मतलब मई जून के महीने में करोंदे वगैरह, यहाँ के आम होते हैं जंगली आम वगैरह, वो भी बहुत मीठे होते हैं इस तरह से। तो उन्होंने वो ग्रुप उनका भाइयों का जंगल में गया, वो लोग तोड़ के लाए और एक उन्होंने मुझे भी ला के दिया, मतलब मैं डिस्पेंसरी में बैठी थी, मुझे भी ला के दिया। तो एक माता जी थी वहाँ पर, उन्होंने देखा कि भाई ने इनको दिया है और मैंने ले लिया, मैंने भी ले लिया। मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कहा ठीक है जंगल का है, खा के देखते हैं यहाँ का करौंदा कैसा होता है। तो लेकिन वो जो माता जी थी वो हमारी दादी जी के किचन में सेवा करती थी, तो उन्होंने जाकर मेरी शिकायत लगाई कि ये बहन ने इन भाई ने इनको दिया और इन्होंने ले लिया। और मैं तो बहुत मुस्कुराते हुए भी लिया क्योंकि कुछ दिमाग में ऐसा था ही नहीं, तो अच्छे से ले लिया मैंने, तो मुझे क्या पता। वहां जाकर जब वो शिकायत हुई तो मेरे को बुलाया, दादी ने नहीं बुलाया लेकिन उनकी साथी बहन ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप डिस्पेंसरी में, वो मुझे शिक्षा देने लगे, देखो आप डिस्पेंसरी में बैठते हो ऐसे 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 ध्यान रखो। तो मेरे समझ ही नहीं पा रही थी मैं क्या बता रही। फिर मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताओ क्या क्या गलती की मैंने। तो उन्होंने कहा ऐसे है वो भाई ने, फिर उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला उन्होंने आपको दिया और आपने लिया। मैंने कहा हाँ लिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, किसी से नहीं लेना है, कोई भी भाई से कुछ नहीं लेना है। मैंने कहा ठीक है यहाँ की मर्यादा है तो जरूर, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं तो हमें पालन करना है। और फिर मैंने उससे भी आगे सोचा, मैंने कहा ये कहते हैं लेना नहीं, मैं तो उनसे बात भी नहीं करूंगी अभी क्योंकि मेरे को क्या मतलब है। जब मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और या जो भी है, हालांकि मैंने कहा मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, उनको लगा होगा कुछ तो वो मुझे देखे गए, पर आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। और बिल्कुल मैंने वो बात उसी समय फुल स्टॉप लगा दिया। तो बाबा भी यही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कुछ नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर दो। और कई बार लोक संग्रह अर्थ भी हमें करना पड़ता है कि क्योंकि लोगों की दृष्टिवृत्ति तो अलग है ना। हम भले ही कोई गलत भाव से बातचीत नहीं कर रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ऐसा भी होता है, लेकिन कोई भी कारोबार से, सेवा से कोई भी कारण बनता है कि हमारा बार बार वो संपर्क होता है या व्यवहार होता है लेकिन कोई दूसरा उसको गलत नजर से देख रहा है और वो बात उठती है, तो वहां भी अगर किसी दूसरों की वृत्ति को हमें चेंज करना है और उसके लिए हमें अपना थोड़ा व्यवहार बदलना पड़े तो हम वो भी करें, है ना। इसको हम कहेंगे थोड़ा हमें त्याग करना पड़ता है तो भले ही हम वो करें। तो ये बाबा जो हैं हमें अपनी दैहिक दृष्टि के प्रति इशारा देते हैं कि कभी भी स्वप्न में भी किसी की देह पर हमारी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। फिर हम ये भी कहते हैं अब वातावरण ऐसा है ना, क्या करें, है ना। दुनिया में जैसे अभी बात किया हमने, तो हमें तो ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है, ऐसे लोगों से काम करना पड़ता है। तो यहां भी बाबा हमें कहते हैं आप विश्व परिवर्तक हो ना। जब हम विश्व परिवर्तक हैं तो फिर उनका प्रभाव मेरे पर पड़ना चाहिए या मेरा प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए कि भाई ये पतित आत्माएं, इनके संपर्क में मैं आ रही हूं तो मेरी दृष्टिवृत्ति पर असर आता है, इनके वाइब्रेशन का असर मेरे ऊपर होता है, तो फिर कौन पावरफुल हो गया। हम पतितों को पावन बनाने वाले हैं, बाबा के साथ हम बाबा के सहयोगी है ना, बाबा ने हमें पावन बनाया तो हमारा भी कर्तव्य क्या है। तो हमें वो कर्तव्य करना है या उनके प्रभाव में आ जाना है, क्या कहेंगे। मेरे से कोई पतित वृत्ति वाली आत्मा मेरे सामने आती भी है तो भी उसकी वृत्ति परिवर्तन हो जाए, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन। जैसे दादियां हमारी शुरू शुरू में सेवा में निकली तो लोगों को थोड़ी पता था, यहाँ तो लोग एक बहन किसी सेंटर पर बैठी है तो, और ब्रह्मा कुमारियों का ये बहनों का स्थान तो शुरू शुरू में लोग गलत ही समझते थे और उसी दृष्टि से आते थे, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं। लेकिन दादियों का जो बोल था या व्यवहार था, जो चलन थी, जो दृष्टि थी, उससे उनका पूरा परिवर्तन हो जाता था। और ऐसे कितने बाबा के बच्चे, वारिस बच्चे बने, आए गलत उससे थे, लेकिन जब सुना और जब उनसे वो शक्ति मिली तो पूरी तरह से उनका परिवर्तन हो गया। ऐसे ही एक बार हम विदेश गए, जब मैं पहली बार विदेश गई, तो बहुत बार जाना हुआ है, लेकिन जब मैं पहली बार अमेरिका गई थी, तो जैसे मैंने बताया वहाँ की कल्चर तो पूरी एकदम ओपन कल्चर है। तो वहाँ एक बहन जो जिनके सेंटर पर मैं थी, उनको निमंत्रण मिला वहाँ के मेयर का, उनका जन्मदिन था, और जैसे बहनें वीआईपी से संपर्क रखती हैं तो उनका भी मेयर से संपर्क था, तो उन्होंने बहन को अपने बर्थडे पर बुलाया। तो मैं थी सेंटर पर, तो उन्होंने कहा कि आपको भी चलना है हमारे साथ, सेवा होगी, आप मधुबन से आए हो, उनसे मिलेंगे हम, मेयर से मिलेंगे और मधुबन के बारे में सारा इंट्रोडक्शन वगैरह देंगे। उसने कहा लेकिन है ना, वहाँ का जो माहौल है भारत जैसा नहीं होगा, है ना। तो वो अमेरिकन बहन थी, है ना, बहुत सारी हमारी इंडियन बहनें हैं विदेश की सेवा में, लेकिन वो अमेरिकन ही थी जो सेंटर संभाल रही थी। तो उसने मुझे कहा कि भारत जैसा नहीं होगा, तो मतलब आपको कुछ ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा। उसने कहा मैं तो यूज्ड टू हूँ, लेकिन तो मैंने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, बाबा ने हमें भी तो ज्ञान दिया हुआ है, समझ दी हुई है, तो हम अपने जो हमारा लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य से जा रहे हैं, उनको जो करना है वो करें। तो उसने कहा कि सब ऐसी ड्रेसेस होंगे, ड्रिंक करेंगे, और वो मतलब वहाँ तो मिलने का तरीका भी अलग ही होता है, हम तो हमारा मिलने का तरीका तो हम दूर दूर से मिलते हैं ना, वहाँ दूर दूर से नहीं मिलते, वो तो सीधा ही गले मिलते हैं, और वो चाहे मेल हो या फीमेल हो कोई भी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम गए वहाँ पर, तो मिले हम मेयर से मिले, उनको विश किया सारा, और रहे भी सही, हम आधा पौना घंटा रहे उस प्रोग्राम में जब तक वो चला उनका, और वही माहौल था पूरा जो विदेश का होता है। लेकिन मैंने ये देखा कि सचमुच बाबा का ज्ञान हमें कितनी मदद करता है, कि अगर हम उस स्मृति में रहते हैं तो जरा भी उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आता। हम आराम से साक्षी होकर के सारा सीन देख रहे थे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। और फिर लास्ट में जब हम आने लगे वहां से, जब पूरा हुआ, हम निकलने लगे, केक वेक कट गया, तो वो मेयर की फैमिली और उन कुछ के फ्रेंड्स थे जो आए, तो उन्होंने हमको एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि हमारी जो आज की ये पार्टी थी उसमें आप दोनों एंजल्स थे। तो उन्हें कैसे एंजल फील हुआ, जरूर हमारी स्मृति उनसे कुछ अलग है, हमारे वाइब्रेशन उनसे कुछ अलग है, तो अपने आप ही उन्होंने उस चीज को फील किया। और ये भी कि ना, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मतलब अपने अपने को छोड़कर कि हाँ, हम वाइट ड्रेस में, दोनों ही हम वाइट ड्रेस में थे, वो भी वाइट, उसने बस सिर्फ एक कलर कोट पहन लिया था ऊपर से, और मैं तो फुल वाइट में ही थी। मैंने उसको बोला था मेरी ड्रेस तो यही रहेगी, क्योंकि अब हम तो समर्पित हैं, तो हमारी ड्रेस तो चेंज होती नहीं है। तो मतलब इस तरह से उन्होंने हमको अनुभव किया। तो लोग हमारा अनुभव करते हैं, अगर हमारी स्मृति वृत्ति वैसी है तो लोगों को वैसा ही फील होगा। तो इसीलिए हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए, हम कैसे भी वातावरण में हैं, कैसे भी लोगों के बीच में हैं, कैसे भी सीन हम देख रहे हैं। अब आप परिवारों में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, वो टीवी चला के बैठे हैं, है ना। आजकल तो लोग वैसे अपने अलग अलग कमरे में अलग अलग टीवी रखते हैं, तो आपको जो देखना है आप देखो, आपको जो देखना है हाँ। तो हमारा तो एम होगा कि हम अपना चैनल देखें, या कोई भी ऐसा अगर हमें कुछ देखना है, कुछ एंटरटेनमेंट करना भी है, तो हमारे लिए इस तरह का ना हो जो जो हमारी धारणा के विरुद्ध हो। लेकिन फिर भी अगर इन केस कोई मजबूरी है और अगर हमें देखना भी है, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कि देखते हुए भी हम जैसे नहीं देख रहे, उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है ना, हमें मालूम है ना वर्तमान समय कौन सा समय है, ये हमें ज्ञान है ना, समझ है ना, तो फिर उसके प्रभाव में हमें क्यों आना है। और हमारी धारणा, हमारा चार्ट खराब हुआ तो बाबा क्या कहता है, महा 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 पाप है। बाबा तो इतने कड़े शब्द मुरलियों में कहते हैं इसके बारे में, और खासकर ये हमारी फैमिली है, ब्राह्मण फैमिली है। ब्राह्मण फैमिली में अगर किसी आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति जाती है तो उसके लिए बाबा कहता है जैसे कि कुल कलंकित है, क्योंकि हम सब ब्रह्मा के बच्चे कौन हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई और बहन है। तो बाबा कहता है जैसे लौकिक में भी भाई बहन अगर एक दूसरे के प्रति कोई दृष्टि होगी तो उसको कुल कलंकित ही माना जाएगा ना, तो ऐसे ही इस ब्राह्मण परिवार में किसी भी आत्मा के प्रति ऐसी दृष्टि अगर गई तो उसको बाबा कहता है कि ऐसे समझो कि हमारी 21 जन्मों की प्राप्ति वाली जो मंजिल है वो टिक नहीं सकती। फिर चाहे हमें कितना भी ज्ञान का अनुभव है, चाहे कितना भी योग द्वारा हमें शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव है, चाहे हमने कितनी भी तन मन धन से सेवा की है, सब क्या हो जाने वाला है? साकार मूल्य में बाबा कहता है कि कमाई चट, अब तक की जितनी भी कमाई की है वो क्या होने वाली है? खत्म। फिर पुरुषार्थ करेंगे, फिर भले हम जमा करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये पूरी कमाई खत्म करने वाला विकार है। इसीलिए बाबा मूल्यों में, साकार मूल्यों में कहते हैं पांचवी मंजिल से गिरने के समान है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण परिवार को किस दृष्टि से देखना है, किस दृष्टि से देखना है? उससे भी आगे बाबा कहते हैं भाई बहन में भी कई बार हाँ गलत दृष्टि हो जाती है, हाँ तो फिर कौन सी दृष्टि से देखना है? आत्मा में भी और आगे, ये शक्ति है, शिव शक्ति है, पूजनीय आत्मा है। अब शिव शक्ति कौन है? पूजनीय आत्मा है, तो ऊंची नजर से देखो, ये त्यागी तपस्वी आत्मा है। और भाई कौन है? पांडव महावीर हैं, और महावीर के दिल में क्या दिखाते हैं? एक राम दूसरा ना कोई। तो उस नजर से देखो जो भगवान सचमुच हमें बना रहे हैं कि ये वो आत्माएं हैं, ये इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, उसके बजाय हम कहां चले जाते हैं? कमी कमजोरियों पर चले जाते हैं, है ना? एक दूसरे पर हमारी नजर जो है वो कई बार, सभी की नहीं लेकिन कई बार ऐसी नजर हो जाती है, ऐसी है वो वैसी नहीं, लेकिन ये शिव की शक्ति है। और बाबा कहता है क्यों नजर गई, इसका मतलब उस अनुभव की कोई कमी है हमारे अंदर, तो हमारे सर्व संबंध किसके साथ हैं? जैसे कहते हैं ना, कोई आत्मा का हमें गुण अच्छा लगता है, कोई आत्मा की हमें विशेषता अच्छी लगती है। ब्राह्मणों में, दुनिया में वो दैहिक दृष्टि देह अभिमान ज्यादा होता है, लेकिन ब्राह्मणों में क्या प्रभावित करता है? उनका ज्ञान प्रभावित करता है, उनका योग प्रभावित करता है, उनका स्नेह देना, सहयोग देना, पालना देना, और जो जिस तरह से वो सेवा करते हैं, तो उनकी जो भी कलाएं हैं, विशेषताएं हैं, वो प्रभावित करती हैं। तो बाबा कहता है वो किसकी देन है, कौन दाता है, ये सब करना किसने सिखाया हमें, और ज्ञान भी किसने दिया है? चलो ठीक है, हरेक का सुनाने का, उसको समझने का, उसको मनन करके उसको स्पष्ट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन ज्ञान दाता कौन है? है तो शिव बाबा ना। हाँ तो ये बहुत अच्छी है, माना अच्छी है माना। फिर बाबा कहता है कि दाल में कुछ कोई भी अच्छा अच्छा करेगा तो उसी समय हमें क्या करना है, उसको स्टॉप करना है, बाबा को बीच में लेकर के आना है। कभी भी बाबा के बिना किसी की अच्छाई नहीं देखनी, कि अच्छाई देने वाला दाता बाबा है, बनाने वाला दाता है। और चाहे मैं भी हूं, अपने ऊपर भी कभी भी अगर अहम, जैसे कहा अहम का सूक्ष्म रूप प्रकट होता है, तो भी मेरी विशेषता भी किसकी देन है? बाबा की देन है। और सदा ये हमें स्मृति में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो जिस भी संबंध से हमें किसी में आकर्षण होता है, वही संबंध हम बाबा से अनुभव करें। तो मेरी कंपनी भी बाबा है और मेरा कंपेनियन भी बाबा। बाबा है, नहीं तो सोचते हैं बाबा तो निराकार है, बाबा तो आकार है, कोई तो चाहिए, एक साथी तो होना चाहिए जिससे दिल की बात कर लें, थोड़ा दिल हल्का कर लें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए साकार में। अब जब मन उलझा होता है तो बाबा से योग भी नहीं लगता, पता नहीं बाबा ने सुना कि नहीं सुना, अगर सुना भी तो जवाब तो मिला ही नहीं, तो फिर क्या कहेंगे, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, एक साथी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जो समझते होना चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जो समझते नहीं होना चाहिए, मेजोरिटी, मतलब ये तो पता है कि नहीं, क्योंकि बाबा जो सर्व समर्थ है, अगर वो मेरा साथी है, उसके आगे अगर हम किसी आत्मा को साथी बनाते हैं तो उस आत्मा के साथ हमारा लेन देन का हिसाब किताब बनना शुरू हो जाता है। तो हम तो कर्म बंधन बांध रहे हैं ना, तो अभी तो हमें कर्मातीत बनना है, सारे कर्म बंधन हमें खत्म करने हैं, फिर हम उसको ही सहारा बना लेते हैं। कोई भी मुश्किल आएगी तो मेरा सहारा कौन, पहले मुझे कौन याद आएगा, बाबा की बजाय वही याद आएगा। तो बाबा तो किनारा कर लेता है, बाबा समझ लेता है कि इसने अब इसको सहारा बना लिया तो अब मुझे इसका सहारा बनने की जरूरत नहीं। तो यथाशक्ति आत्मा का सहारा और बाबा का सहारा, उसमें फर्क होगा या नहीं होगा, फर्क होगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें कि किसी भी आत्मा को कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो थोड़े समय की ही परीक्षा होती है, वो हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। बाबा कहते हैं जब भक्तों को भी मैंने अनुभव कराए हैं तो आप तो मेरे डायरेक्ट बच्चे हो, आपको अनुभव नहीं कराएगा बाबा, लेकिन उस थोड़े समय की परीक्षा में ही हम हिल जाते हैं और फिर आत्माओं को सहारा बनाना शुरू कर देते हैं। तो हम फेल हो गए ना, पास हुए या फेल हुए, लेकिन अगर हम अचल अटल रहते हैं अपनी इस धारणा में कि चाहे जो हो बाबा ही मेरा साथी है, मुझे अपने दिल की बात बाबा से ही करनी है, फिर देखो बाबा कैसे आपके लिए रास्ता निकालता है, या बाबा किसी को निमित्त बनाएगा आप सोचेंगे भी नहीं, सपने में भी आपने नहीं सोचा होगा कि बाबा से हमें ये सेल्वेशन या ऐसे समाधान मिलेगा। और बाबा के पास बैठते हैं और मन हल्का ना हो ऐसा होता ही नहीं, कौन समझते हैं कि बाबा के सामने बैठते हैं, कोई भी बात मन में होती है बाबा के पास बैठे बाबा को कही और मन हल्का नहीं हुआ, या हुआ, जो समझते हो जाता है वो हाथ उठाओ, तो बाबा हमें शक्ति भर देते हैं ना। तो बाबा खुद भले ही निराकार आकार है, हमारे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन बाबा की शक्ति तो हमारे साथ है ना। तो बाबा हमें वो हिम्मत, वो बल, वो शक्ति दे देता है कि वो परिस्थिति हमें परिस्थिति लगती नहीं, हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ पार कर रहे हैं, वो सहज हो जाता है हमारे लिए। तो प्यूरिटी की हमारी धारणा का आधार ही ये है कि एक बाबा से ही मेरे सर्व संबंध हैं, बाबा के अलावा सब से मेरा संबंध सेवा का संबंध है, चाहे वो मेरा परिवार है, चाहे वो लौकिक परिवार है, चाहे मेरा अलौकिक परिवार है, बाबा ने मुझे सेवा के निमित्त बनाया है ना। और ये शरीर भी बाबा ने मुझे दिया है, सेवा के लिए दिया है, इस तन में भी हमारा मोह नहीं होना चाहिए ना। मैं अभी सभी विकारों के अंश वंश के विस्तार में नहीं जा रही हूँ क्योंकि समय हो रहा है, तो समय पर ही क्लास पूरा करेंगे। लेकिन जो हमारा अपने में मोह होता है या दूसरों की देह में मोह होता है, तो ये सारा भी नहीं। कौन मेरा है, बाबा कहते हैं शिव बाबा ही मेरा है, बाकी सबको तेरा तेरा कह दो, मेरे बच्चे, मेरा पति, जो भी है, कौन है, सब बाबा के हैं, बाबा जिम्मेवार हैं, बाबा ने मुझे निमित्त रखा है, बाबा ने मुझे ट्रस्टी बनाया है, इनकी सेवा के लिए मैं हूं। तो हमारी जो प्यूरिटी का लेवल की, उनके प्रति फिर हमारी सदा शुभ भावना रहेगी, है ना। अगर हमारी भावनाएं बदलती है, जैसे कहा अगर हम ईर्ष्या द्वेष में आ गए, घृणा में आ गए, वैर भाव में आ गए, तो वो भी प्यूरिटी नहीं है। और प्यूरिटी की एक स्टेप और है, बाबा कहता है सच्चाई सफाई। प्यूरिटी इज रियलिटी, क्योंकि शिव बाबा सच्चा है, सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम हम उसे कहते हैं। तो बाबा को सच्चाई सफाई पसंद है, तो मन हमेशा हमारा साफ होना चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी, तो बाबा हमारी सच्ची दिल पर राजी होता है। तो वो सच्चाई सफाई अंदर बाहर एक, बाबा से तो हम सच्चे रहे ही रहे हैं, लेकिन आपस में भी जहां हम रहते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, उनके साथ भी हमारा व्यवहार सरल हो, माना सच्चाई सफाई वाला हो। नहीं तो आज का इंसान कैसा है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। बाहर में आपसे बहुत अच्छा अच्छा और अंदर कपट भरा होगा, मौका मिलते ही वो आपके लिए कुछ भी ऐसा कर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आप सोचेंगे अरे इतना विश्वास हम इन पे करते थे, धोखा मिल गया हमको, इसने तो मुझे, तो इस व्यवहार को क्या कहेंगे। तो इसको सच्चाई सफाई नहीं कहते। या फिर कोई भी हमसे गलती होती है बाबा के प्रति, तो हम कहेंगे तो बाबा कहता है आधा माफ हो जाएगा। और अगर हमने बाबा को छाड़ दिया, सच्चा छाड़ दिया, तो आगे के लिए बाबा हमें वो शक्ति भी दे देते हैं कि हम उस कमी पर विजय पा लें। लेकिन आपस में भी कोई ऐसी हमसे गलती हो गई जो मर्यादा के विपरीत है, तो जो भी निमित्त आत्माएं हैं उनके प्रति भी हमें सच। नहीं तो कई बार लोग सोचते हैं मेरा मान चला जाएगा, ना मेरा नेचुरली होता ही है, मेरी कमी सामने आ गई तो क्या होगा, जो मेरा सम्मान रहना चाहिए वो नहीं, मैं उनकी नजरों में कहीं कम ना हो जाऊं, तो छुपाते हैं और फिर सिद्ध करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर अगर हमने उसे स्वीकार कर लिया और गलती है तो सॉरी बोल दी, तो कभी भी हम किसी की नजरों में गिरते नहीं, बल्कि और ही हम उनका विश्वास जीत लेते हैं कि ये सच्चे हैं, ये कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। दुनिया में भी कहते हैं झूठ बोलना पाप है, तो बाबा तो हमें कहता है कि ठीक है पाप तो है, लेकिन अगर हम उस सच्चाई सफाई पर चलते हैं तो बाबा के दिल तख्त नशीन हम बन जाते हैं, ऐसी हमारी धारणा होनी चाहिए। तो ये हैं प्यूरिटी के स्टेप्स। तो अब हम इस अनुसार अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हमारी पवित्रता की स्टेज में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि सतयुग में पहले जन्म में आना, आदि काल में आना, माना संपूर्ण पवित्र बनना। तो ये संपूर्ण पवित्रता की डिग्री हमें उस सतयुगी सृष्टि के श्री कृष्ण के समय में आने का अधिकारी बनाती है। ओम शांति। Thank you.
बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर सविता बिन, आपने पवित्रता की गहराइयों तक सभी को पहुंचाया। यूं तो बाबा के बच्चे बने और पवित्र बनने का व्रत लिया, लेकिन फिर भी हमारी पवित्रता कितनी गहरी है वो आपने सभी को बताई, और सभी भी चेक करते रहेंगे कि हमारी पवित्रता कहाँ तक है, और इस भट्टी से और संकल्प को पक्का करके जाएंगे, क्योंकि वहां के लोगों को भी आपकी प्रोग्रेस दिखाई देनी चाहिए। पवित्रता चेहरे पर हमेशा झलकती है, उसका रिफ्लेक्शन होता ही है। तो इसलिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद।